लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष श्री फिलमोन यांग भारत सरकार के निमंत्रण पर मंगलवार 4 फरवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। महासभा अध्यक्ष 8 फरवरी तक चलने वाली अपनी भारत यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली और बेंगलुरु का दौरा करेंगे। महासभा अध्यक्ष की भारत यात्रा का मकसद महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर भारत के साथ बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मसले व भविष्य के लिए समझौता भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष बुधवार 5 फरवरी को नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने यूएन की विभिन्न एजेंसियों के प्रमुखों से मिलकर देश में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों की जानकारी हासिल की। बाद में वे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने गौतम बुद्ध नगर रवाना हुए। महासभा अध्यक्ष देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी मुलाकात करके अहम मुद्दों पर चर्चा की। महासभा अध्यक्ष फिलिमोन यंग गुरुवार को प्रौद्योगिकी समृद्ध बेंगलुरु शहर गए। वहां वे मशहूर इन्फोसिस कंपनी और भारतीय विज्ञान संस्थान का भी दौरा करेंगे। पूर्वी कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सरकारी सुरक्षा बलों और रवांडा समर्थित हथियारबंद गुट M23 के बीच लड़ाई हो रही है और विदेशी गुट ने नॉर्थ किवू प्रांत की राजधानी गोमा पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद अब साउथ किवू राज्य के बुकावू शहर का रुख किया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने कोंगो के पूर्वी हिस्से में सरकारी बलों और M23 के बीच लड़ाई बढ़ने के बीच हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया है कि गोमा और उसके आसपास के इलाकों में कई दिनों तक भीषण लड़ाई में फंसे आम लोगों के लिए स्थिति बदतर होती जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का यह हिस्सा खनिज संपदा से परिपूर्ण है, मगर यहाँ पिछले कुछ दशकों से अनेक हथियारबंद गुट सक्रिय रहे हैं। सुरक्षा के अभाव में लाखों नागरिक पिछले कुछ वर्षों में अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यूएन मानवीय सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि 10 लाख की आबादी वाले शहर गोमा और उसके आसपास के इलाकों में लड़ाई की वजह से आम नागरिक फंसे हुए हैं। आम नागरिक और सैन्य कर्मियों के हताहत होने की वजह से अस्पतालों पर भीषण बोझ है, जबकि जल और खाद्य सामग्री की किल्लत है। गोमा के हवाई अड्डे पर कब्जा होने और उसे बंद करने से सहायता वितरण में बाधा आई है। संयुक्त राष्ट्र के आपात राहत मामलों के कार्यालय ने जीवन रक्षक सहायता के लिए केंद्रीय आपातकालीन कोष से $1.7 करोड़ की रकम आवंटित की है।
फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी का कहना है कि गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम सहित पश्चिमी तट में उसके कर्मचारी आम नागरिकों को अब भी सहायता मुहैया करा रहे हैं। इसराइली संसद द्वारा पारित कानून में यूएन एजेंसी की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है और यह 30 जनवरी से ही लागू हो गया है। गाजा पट्टी में युद्ध विराम लागू होने के बाद से अब तक 5 लाख फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा में लौट चुके हैं। घर वापस आने के बावजूद स्थानीय आबादी के लिए हुई बर्बादी और गंभीर हालात विशाल कठिनाइयों की वजह है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
बताया गया है कि सलाह अद्दीन और अल रशीद सड़क मार्गों के खुल जाने के बाद दक्षिणी गाजा से 462,000 से भी अधिक लोगों ने उत्तरी गाजा में प्रवेश किया है। यूएन व अन्य मानवीय सहायता संगठन इन मुसाफिरों को जल, पौष्टिक खाद्य सामग्री व चिकित्सा देखभाल मुहैया करा रहे हैं। यूएन सहायता कर्मियों के अनुसार गाजावासी उत्तरी गाजा पहुंचने के बाद अपने क्षतिग्रस्त घरों से मलबा हटा रहे हैं और वहां अस्थायी आश्रय स्थल या टेंट स्थापित कर रहे हैं। UNRWA यानी UNRWA की संचार निदेशक जूलिय टूमा ने आगाह किया है कि इस एजेंसी के कामकाज में किसी भी प्रकार का व्यवधान आने से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के जीवन व भविष्य के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे।
Our teams continue to serve even though in Gaza, as an example, they themselves are impacted.
जूलिया टूमा कह रही थी कि हमारी टीमें सेवाएं मुहैया करा रही हैं, जबकि वो खुद भी प्रभावित हैं। UNRWA की टीमों को भी अपने घरों से पलायन करना पड़ा है, मगर वो फिर भी लोगों की सहायता करने में सक्रिय हैं। और UNRWA एजेंसी काबिज फिलिस्तीनी क्षेत्र में बने रहने व सहायता अभियान जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि क्नेसेट द्वारा पाबंदी लगाए जाने के बाद UNRWA को काबिज पूर्वी यरूशलम समेत अपने सभी परिसरों को खाली करने और 30 जनवरी तक अपने सहायता अभियान को बंद करने का आदेश दिया गया था।
म्यांमार में सैन्य नेतृत्व को सत्ता छोड़नी होगी ताकि देश में एक समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए नागरिक शासन की वापसी सुनिश्चित की जा सके। संयुक्त राष्ट्र के शीर्षतम अधिकारी अंतोनियो गुटेरेस ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के 4 वर्ष पूरे होने पर जारी अपने एक वक्तव्य में यह पुकार लगाई। म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ टॉम एंड्रूज ने कहा कि यह क्षण संकट से गुजर रहे देश में मानवाधिकारों के पक्ष में खड़े होने वाले नायकों का आभार प्रकट करने का भी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
यूएन महासचिव ने गुरुवार को अपने संदेश में हिंसा के सभी रूपों की निंदा की और युद्धरत पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, मानवाधिकारों व अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून की रक्षा करने की अपील की है। म्यांमार फिलहाल एक गंभीर संकट की चपेट में है। 2 करोड़ लोगों को यानी कुल आबादी के 1/3 हिस्से को इस वर्ष मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। बुनियादी खाद्य वस्तुओं की कीमत पिछले 1 वर्ष में 30% तक बढ़ चुकी है और हिंसक टकराव की वजह से सप्लाई चेन में व्यवधान आया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सैन्य नेतृत्व द्वारा देश में चुनाव कराए जाने की योजना पर भी चिंता जताई और कहा कि टकराव बढ़ने और बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन के मामलों के बीच स्वतंत्र व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव आयोजित कराना संभव नहीं है।
HIV एड्स की रोकथाम हेतु प्रयासरत UN एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उस निर्णय का स्वागत किया है जिसमें विदेशी सहायता पर लगाए गए रोक में अब कुछ छूट दी जाएगी। इस घोषणा से HIV एड्स उपचार के लिए धनराशि समर्थन जारी रखना संभव हो पाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने कार्यकारी आदेश के जरिए सभी प्रकार की देशी सहायता पर अगले 90 दिनों के लिए तत्काल रोक लगा दी थी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार को इस आपात मानवतावादी छूट को स्वीकृत किया जिससे 50 से अधिक देशों में अमेरिकी समर्थन से HIV उपचार सेवाएं जारी रखी जा सकेंगी। इनमें एड्स राहत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की योजना भी है जिसे प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ यानी PEPFAR के रूप में भी जाना जाता है। HIV के विरुद्ध लड़ाई में यह अमेरिकी योजना PEPFAR एक अग्रणी पहल मानी जाती है। इस योजना के जरिए HIV वायरस के साथ जीवन गुजार रहे 2 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे तौर पर समर्थन दिया जाता है। WHO के अनुसार वित्तीय समर्थन पर रोक लगाने से उन लाखों जिंदगियों पर असर होता जिन्हें सुरक्षित व कारगर एंटी रेट्रोवायरल उपचार की नियमित आवश्यकता है। अमेरिकी सरकार की इस छूट के जरिए जीवन रक्षक मानवीय सहायता को जारी रखने या उसे फिर शुरू करने को स्वीकृति दी गई है जो कि HIV उपचार समेत अन्य अहम दवाओं व मेडिकल सेवाओं पर लागू होगी।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आशीष देना मुझको प्रभु वर, तेरी शरण में आया हूँ। आशीष देना मुझको प्रभु वर, तेरी शरण में आया हूँ। है अंधेरी राह जगत की, है अंधेरी राह जगत की, ज्योति पाने में आया हूँ। आशीष देना मुझको प्रभुवर, तेरी शरण में आया प्रभु। तेरी रचना है जिसमें छाई तेरी करुणा है, नई नई प्रभु तेरी रचना है जिसमें छाई तेरी करुणा है। तेरे कार्य प्रभु सबसे महान है,
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। मानव तस्करी के खिलाफ 11वें विश्व प्रार्थना और चिंतन दिवस के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने एक विशेष संदेश जारी कर जयंती वर्ष के दौरान संपूर्ण विश्व के कैथलिकों से आग्रह किया कि वे आशा के तीर्थ यात्री रूप में मानव तस्करी से निपटने के मार्ग पर एक साथ चलें। उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक सूडानी महिला और धर्म बहन संत जोसेफिन बगीता की धार्मिक स्मृति पर आधारित है, जो बचपन से ही मानव तस्करी की शिकार बनी थी और अब इस भयानक समस्या के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई हैं। मानव तस्करी से जुड़े कई सवालों को प्रस्तुत करते हुए संत पापा ने कहा, हम इस आधुनिक गुलामी में फंसे लाखों लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, युवाओं और आप्रवासियों, शरणार्थियों के सामने आशा का संचार कैसे कर सकते हैं। मानव अंगों और उत्तकों के व्यापार, लड़के लड़कियों के यौन शोषण, वेश्यावृत्ति सहित जबरन श्रम, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी से निपटने के लिए हम हमेशा नई प्रेरणा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हम दुनिया में यह सब कैसे दर्ज कर सकते हैं कि आशा को कभी न खोएं? उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब हमें ख्रीस्त की ओर दृष्टि उठाकर ही मिल सकता है, क्योंकि ख्रीस्त ही हमारी आशा है। प्रभु ख्रीस्त में विश्वास से ही हम नवीकृत प्रतिबद्धता के लिए शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो समस्याओं से हमें पराजित नहीं होने देती बल्कि अंधकार में प्रकाश की ज्वाला जलाने का कार्य करती है, जो एक साथ मिलकर रात्रि को तब तक प्रकाशित कर सकती है जब तक भोर न हो जाए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में संपूर्ण विश्व में मानव तस्करी के खिलाफ लड़ रहे युवा हमें एक उदाहरण पेश करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें आशा के राजदूत बनना चाहिए और दृढ़ता एवं प्रेम के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमें पीड़ितों और बचे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर की सहायता से हम अन्याय के आदि होने से बच सकते हैं और यह सोचने के प्रलोभन को दूर कर सकते हैं कि कुछ घटनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। पुनर्जीवित प्रभु येसु का आत्मा हमें साहस और प्रभावशीलता के साथ तस्करी और शोषण से लाभ कमाने वाले आर्थिक और आपराधिक तंत्रों को कमजोर करने तथा उनका मुकाबला करने के लिए लक्षित पहल को बढ़ावा देने में समर्थन प्रदान करता है। संत पापा ने कहा कि मानव तस्करी एक जटिल, निरंतर विकसित होने वाला भयानक तथ्य है, जो युद्धों, संघर्षों, अकालों और जलवायु परिवर्तन के परिणामों से प्रेरित होता है। अस्तु इसका मुकाबला करने के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया और सभी स्तरों पर साझा प्रयास की नितांत आवश्यकता है। वेटिकन में शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने मानव तस्करी के खिलाफ 11वें विश्व दिवस के अवसर पर तलिता कुम नेटवर्क के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उन्हें अपना संदेश प्रदान किया तथा मानव तस्करी को समाप्त करने की उनकी दैनिक प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने स्मरण दिलाया कि उक्त मुलाकात संत जोसेफिन बगीता के पर्व की पूर्व संध्या पर हो रही थी, जो स्वयं इस भयानक सामाजिक संकट की शिकार बनी थी। उन्होंने कहा कि संत जोसेफिन बगीता की कहानी हमें शक्ति देती है और दिखाती है कि प्रभु की कृपा से अन्याय और हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए अपनी बेड़ियां तोड़ना, मुक्त होना और कठिन परिस्थितियों में दूसरों के लिए आशा के संदेश वाहक बनना संभव है। संत पापा ने कहा कि मानव तस्करी एक विश्वव्यापी समस्या है जो निरंतर जारी है तथा लाखों लोगों को अपना शिकार बनाती है। यह हमारे समाजों और पूरे विश्व में घुसपैठ करने के लिए लगातार नए तरीके खोजा करती है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी के सामने हमें उदासीन नहीं होना चाहिए, अपितु तो अपनी शक्तियों और अपनी आवाजों को एकजुट कर सभी से इस प्रकार के अपराध से निपटने की जिम्मेदारी स्वीकार करने का आह्वान करना चाहिए, जो सबसे कमजोर लोगों से लाभ कमाता है। संत पापा ने कहा कि हम अपनी बहनों और भाइयों का शर्मनाक शोषण बर्दाश्त न करें। मानव तस्करी, यहाँ तक कि छोटे बच्चों का यौन शोषण और जबरन श्रम एक शर्मनाक बात है तथा मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। संत पापा ने कहा कि तलिता कुम एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है और इसके कुछ सदस्य मानव तस्करी के खिलाफ प्रार्थना और जागरूकता के सप्ताह के लिए बहुत दूर से यात्रा कर आए हैं, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से युवा प्रतिनिधियों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करना चाहूंगा, जो रचनात्मकता और सजीवता के साथ मानव तस्करी की बुराई के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जानकारी प्रदान करने के नए तरीकों की खोज कर रहे हैं। उन्होंने इस नेटवर्क में शामिल सभी संगठनों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया कि वे मिलकर काम करना जारी रखें, पीड़ितों और बचे लोगों को अपनी प्राथमिक चिंता बनाएं, उनकी कहानियां सुनें, उनके घावों की देखभाल करें और उन्हें समाज में अपनी आवाज उठाने में सक्षम बनाएं। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल जोवानी बत्तिस्ता रे और कार्डिनल लियोनार्डो सांद्री के कार्डिनल मंडल के क्रमशः डीन और वाइस डीन रूप में कार्यकाल को बढ़ा दिया है तथा कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट को कार्डिनल धर्माध्यक्ष की संख्या में शामिल कर दिया है। संत पापा के इस निर्णय की घोषणा 6 फरवरी को वेटिकन प्रेस द्वारा एक वक्तव्य में की गई, जिसमें कहा गया कि 7 जनवरी को संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल जोवानी बत्तिस्ता रे की नियुक्ति की मंजूरी को स्थगित करने तथा कार्डिनल सांद्री की नियुक्ति को 14 जनवरी को स्थगित करने का निर्णय लिया था। गुरुवार 6 फरवरी को ही संत पापा फ्रांसिस ने यह भी तय किया कि धर्माध्यक्षों के लिए गठित परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट कार्डिनल मंडल के भीतर धर्माधीक्षित धर्म संघ के सदस्य बनेंगे। उन्होंने कार्डिनल प्रीवोस्ट को अल्बानो के उपनगरीय गिरजाघर के अध्यक्ष की उपाधि से भी सम्मानित किया। वेटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा पत्रकारों को दिए एक बयान में कहा गया कि इन दिनों ब्रोंकाइटिस से पीड़ित होने के कारण तथा अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए शुक्रवार 7 फरवरी और शनिवार 8 फरवरी को संत पापा फ्रांसिस की समस्त मुलाकातें संत मर्था प्रेरितिक आवास में होंगी। गुरुवार की सुबह भी संत पापा फ्रांसिस ने अपने निर्धारित कार्यक्रमों को वेटिकन के प्रेरितिक प्रासाद के बजाय वेटिकन स्थित संत मर्था प्रेरितिक आवास में संपादित किया था। उन्होंने रोम की एक अध्ययन यात्रा पर आए पूर्वी रीति की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के युवा पुरोहितों और मठवासियों से मुलाकात की थी और बाद में इटली के दक्षिणी कलाब्रिया क्षेत्र से आए स्त्री रोग विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकातें की थी। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।